Christian life is a choice.
मसीह जीवन एक चुनाव का जीवन है.
It's not something which someone has imposed on us.
और ये ऐसा जीवन नहीं जिसमें हमें जबरदस्ती ठोप दिया हो.
Each one of us who choose to be a disciple of Jesus is our own choice.
अगर हमें यीशु मसीह का शिष्य बनना है तो ये अपना खुद का चुनाव है.
There is no pressure from God. There's no pressure from anyone.
और किसी व्यक्ति या परमेश्वर से कोई दबाव नहीं है.
It's like that man who saw a pearl of great price in a field.
और जिस व्यक्ति ने उस खेत के अंदर देखा कि बहुत एक धन वहाँ पे छिपा हुआ है.
When he found the value, when he realized the value of that pearl, he has no problem in selling all that he had and go and buy that field, because he knew in that field there is that pearl of great value.
और जिस व्यक्ति को उस धन जो उस खेत में छिपा हुआ था उसका मूल्य जब उसको पता चला तो उसने अपना सब कुछ बेचने के लिए भी पीछे नहीं रखा.
It's good to understand and realize that.
और इस चीज को समझना बहुत अच्छी बात है.
When Jesus was on the earth, a large crowd used to follow him.
जब यीशु मसीह धरती पर था बहुत एक बड़ी भीड़ उसके पीछे अनुसरण करती थी.
Jesus told them,
यीशु ने उनसे कहा,
if anyone comes to follow me,
और यीशु उनसे कहता है कि जो भी मेरा अनुसरण करना चाहता
है, and not willing to hate his father, mother, wife and children and brothers and sisters and even his own life, you cannot be my disciple.
और यीशु कहते कि जब तक आप अपने भाई बहन पिता माता और यहाँ तक कि अपने खुद के जीवन को आप तिरस्कार नहीं करते तब तक आप मेरे शिष्य नहीं बन सकते.
So there's a cost for discipleship.
और यीशु का शिष्य बनने के लिए कीमत है.
And Jesus even explained saying that if whoever is planning to build a tower.
और जैसे यीशु ने इसको उदाहरण में सिखाया कि जैसे एक बड़ी इमारत को अगर कोई बनाता है,
Before starting that, will you not count the resources you have?
और क्या उसको बनाने से पहले अपने सारे स्रोतों को गिनेगा नहीं क्या?
So there's a cost for any precious thing.
और हर एक मूल्यवान चीजों के लिए कीमत होती है.
So in the same way, following Jesus also there's a cost.
और उसी प्रकार यीशु मसीह के पीछे चलने में भी एक कीमत है.
But the reward and value is far beyond the cost we pay.
लेकिन उसका प्रतिफल जो है वो बहुत बढ़कर है जितना दाम या कीमत हम चुकाते हैं उससे.
When people saw Jesus was able to feed thousands of people just by multiplying 5 loaves, like that.
जब लोगों ने देखा यीशु मसीह कुछ चंद रोटी और उससे बहुत हजारों लोगों को खिला रहा था.
This is again a large crowd following him.
और वहां हम देखते एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो रही थी.
But majority were following for that earthly blessing.
लेकिन ज्यादातर लोग यीशु के पीछे उस दुनिया की आशीषों के लिए थे.
फॉर फ्री फूड,
और एक मुफ्त में खाना,
एक्यूट हीलिंग ऑफ सम डिजीज,
और तुरंत एक रोग से चंगाई प्राप्त करने के लिए,
सम अर्थली बेनिफिट और ब्लेसिंग,
और कुछ दुनिया की आशीष और कुछ प्राप्त करने के लिए.
बट व्हेन जीसस स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ डिसिपल्स, मेनी पीपल लेफ्ट हिम.
और जब यीशु ने उस शिष्य होने की जो कीमत को बात किया तो बहुत सारे लोग उसको छोड़कर चले गए.
एंड जीसस नॉट कॉल एनीवन बैक, प्रेशर क्वेयर्स देम टू कम बैक फॉलो हिम.
और यीशु ने कहीं पे किसी पर दबाव नहीं डाला कि वो वापस उसके पास उसके शिष्य बनने आए.
जेंटली अलाउड देम टू गो.
और यीशु ने अनुमति दी कि वो उनसे दूर जाए.
ही डिड नॉट कंडम, ही डिड नॉट अक्यूज देम, ही डिड नॉट से एनीथिंग, यू आर बिट्रे, नथिंग ही सेड.
और यीशु ने उनको दोषित नहीं ठहराया. यीशु ने उनको कहीं पर भी कहा नहीं कि तुम वापस आओ, क्या तुमने धोखा दिया है.
ही गेव फ्री चॉइस टू एनीवन टू लीव हिम.
लेकिन यीशु ने एक मुफ्त में एक बहुत ही बड़ा एक चुनाव उनके सामने रखा.
एंड देन इवन ही आस्क्ड, इवन ही सॉ द रिमेनिंग 12 डिसिपल्स, आर यू आल्सो नॉट लीविंग मी एंड गोइंग.
और यीशु ने अपने शिष्य यहाँ तक 12 जो शिष्य उनसे भी कहा कि क्या तुम मुझे भी छोड़कर जाना चाहते हो.
सो इवन आफ्टर एवरीवन लेफ्ट एंड द 12 डिसिपल्स वर लीविंग टू देम, ही आस्क्ड द फ्रेंड, इफ यू विश प्लीज गो, यू कैन गो योर वे.
और सारे लोग जाने के बाद यीशु अपने शिष्यों से कहता है अगर आप भी जाना चाहते हो, एक चुनाव उनके सामने रखता है.
बट दैट टाइम पीटर रेस्पोंडेड लाइक दिस.
और वहां पतरस इस तरह से प्रत्युत्तर देता है,
लॉर्ड टू हुम शैल वी गो, यू हैव वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ.
और पतरस कहता है कि प्रभु हम किसके पास जाए, तेरे पास ही जीवन के वचन है.
सो पीटर रियलाइज, द डिसिपल्स रियलाइज विद जीसस इज वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ.
और वहां शिष्यों ने यह जान लिया कि परमेश्वर यीशु मसीह के पास ही अनंत काल के वो वचन है.
दोस्ट हु डिडंट रियलाइज दे लेफ्ट.
اور جن کو یہ احساس نہیں ہوا وہ چھوڑ کر چلے گئے.
They said, it's too much for me. I can't pay such a cost.
اور انہوں نے سوچا کہ یہ بہت زیادہ ہے, ہم اس قیمت کو نہیں چکا سکتے.
I am only looking for some earthly benefit, food, healing, etc.
اور مجھے تو صرف دنیا کی آشیش چاہیے, کچھ بھوجن چاہیے, کچھ چنگائی چاہیے.
They did not see, realize that the words of eternal life is with Jesus.
لیکن انہوں نے یہ پہچان نہیں کہ انت کال کے جو وچن ہے وہ یشو مسیح کے پاس ہے.
So it's good that sometime to ask ourselves this question, whether I am willing to pay a cost for being a disciple of Jesus.
اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ کئی بار ہم اس پرشن کو اپنے آپ سے پوچھیں, کیا میں تیار ہوں یشو کا ششیہ بننے کے لیے, اس قیمت کو چکانے کے لیے.
It's good to build our Christian life on a good foundation.
اور ہمارے مسیح جیون کو ایک اچھی نیو پر بنانا اچھی بات ہے.
Jesus said so many examples.
یشو نے بہت سارے ادھارن دیے,
such as a man, a foolish person building his house on a sand.
اور ایک مورکھ جو ویکتی ہے ایک بالو کے اوپر, ریت کے اوپر اپنے گھر کو بناتا ہے.
That is an example how without a proper foundation a beautiful building is built can be seen by everyone else.
اور اس ادھارن میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیو کے بنا ایک گھر جو عمارت بنتا ہے وہ اور لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو.
But there is no foundation, it's all built on sand.
اور وہ ریت پر بنایا ہے, اس میں کوئی بھی نیو نہیں ہے.
When the storm came, rains came, it hit this building, it collapsed.
اور طوفان آئے, بارش آئے, اس طوفان سے یہ جو عمارت جو تھی وہ گر گئی.
But a wise man dug deep.
لیکن ایک بدھیمان ویکتی جو کھودتا ہے گہرا,
built the foundation on the rock.
اور وہ اس چٹان کے اوپر نیو کو بناتا ہے.
He gave attention to that hidden things.
اور وہ جو چھپی ہوئی بات ہے اس پر دھیان کو لگاتا ہے.
Which is not so much visible for others.
شاید اس چیز کو اور لوگ نہیں دیکھ پاتے.
And on that foundation he built the house.
اور اس نیو کے اوپر وہ گھر کو بناتا ہے.
So very powerful storm came and hit, but that building did not collapse.
اور بہت ہی طوفان بارش آنے پر بھی وہ مضبوط نیو کے کارن وہ عمارت نہیں گری.
Because the building was built on a solid foundation.
کیونکہ وہ عمارت جو ایک مضبوط نیو پر بنائی گئی ہے.
So our faith, our Christian life also should be found on solid footing.
اور ہمارا بھی ایک مسیح جیون کا وشواس جو ایک نیو, ایک مضبوط نیو پر بنایا جانا چاہیے.
Otherwise it will not be stable.
اور نہیں تو وہ نرنتر وہ ٹکے گا نہیں.
Even if it takes some time, it is better we give adequate attention there.
اور وہاں پر ہم ایک پریاپت اس کے اوپر دھیان دیں.
Instead of giving focus on external things.
اور باہری چیز کے اوپر دھیان دینے کے بجائے.
Our relationship with Christ should be on strong footing.
اور ہمارا یشو مسیح کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرے.
So it's good to ask, where is my commitment to Christ?
یہ چیز پوچھنا اچھی بات ہے اپنے آپ سے کہ میرا سمرپن یشو مسیح کے پرتی کہاں ہے.
Have I offered myself to him, Jesus, as a whole?
کیا میں نے پورن طرح سے اپنے آپ کو یشو مسیح کو سونپا ہے؟
Did we realize that Jesus has the words of eternal life?
کیا ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ یشو مسیح کے پاس ہی انت کال کے وچن ہے؟
In Galatians 2:20, Paul is saying,
گلاتی 2:20 کے اندر پولس اس پرکار کہتے ہیں,
I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me.
میں مسیح کے ساتھ کروس پر چڑھایا گیا ہوں, اب میں جیوت نہ رہا پر مسیح مجھ میں جیوت ہے. اور میں شریر میں اب جو جیوت ہوں تو کیول اس وشواس سے جیوت ہوں جو پرمیشور کے پتر پر ہے جس نے مجھ سے پریم کیا اور میرے لیے اپنے آپ کو دے دیا.
So when Paul gave himself without any reservation.
اور پولس نے یشو مسیح کو کسی بھی آرکشن کے بنا یشو مسیح کو سونپا اپنے آپ کو.
He did not try to preserve part of his being.
اور اپنے آپ کو خود کا کچھ بھی اپنے آپ کو اس نے سنبھال کے نہیں رکھا.
He could say that I have been crucified with Christ.
اور وہ یہاں پر کہہ سکتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ کروس پر چڑھایا گیا ہوں.
It is no longer I.
اب میں جیوت نہیں ہوں.
That I has gone.
لیکن اب جو میں ہوں وہ چلے گیا ہے.
It is Christ who lives in me.
اب مسیح مجھ میں جیوت ہے.
And he has explained the life that I live in the flesh.
اور وہ کہتا ہے کہ اب شریر میں جو میں جیون جیتا ہوں,
I live by faith in the Son of God.
اب وہ پتر یشو مسیح پر وشواس رکھتے ہوئے جیتا ہوں.
Who loved me and gave himself up for me.
اور جس نے مجھ سے پریم کیا اور میرے لیے اپنے آپ کو دے دیا.
So his faith, his life is focused on the Son of God who loved him.
اور پولس کا جیون جو ہے یہ وشواس پر ہے جو یشو مسیح کے اوپر ہے.
When Jesus said he loves each one of us, he did not just say like pleasantly good words just to please others.
और यीशु मसीह ने इन शब्दों को जो उसे कहा कि वो हमसे प्यार करता है, केवल हमें खुश करने के लिए उसने इस शब्दों को नहीं कहा.
When he saying that, when he, I love each one of you, what he means is I give myself to each one of you.
और जब वो कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, उसका मतलब है कि उसने अपने आप को हम सबों के लिए दे दिया.
So Jesus displayed his love not by saying I love you, he gave himself for us.
और केवल बोलने के द्वारा उसने नहीं कहा दर्शाया, लेकिन अपने आप को देकर दर्शाया कि वो हमसे प्यार करता है.
That is what captivated Paul.
और इसी ने पौलुस को बांध कर रखा.
So it's good to then that should be what that is what should motivate us.
और इसी से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए.
Jesus loved me and gave himself up for me.
और यीशु मुझसे प्रेम किया और उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया.
He deserved my full devotion.
और यीशु मसीह मेरे जीवन को पूरी तरह से वो योग्य है मेरे जीवन.
He deserved my unreserved dedication of my life.
और बिना आरक्षित का मेरा जो समर्पण यीशु मसीह है उसके योग्य है वो.
He deserved my entire life.
और यीशु मसीह मेरे जीवन को प्राप्त करने के पूरा योग्य है.
My body, my soul, my spirit.
मेरा शरीर, प्राण, आत्मा.
My plans, my future.
और मेरा भविष्य, मेरी सारी योजनाएं.
My career, my wealth.
और मेरा सारा भविष्य, मेरा सारा धन.
The earthly goods we had, Jesus owe it all.
और सारा दुनिया का जो भी मेरी चीज़ है, वो सब कुछ यीशु मसीह तेरा है.
So it's good to ask, are we willing to surrender our lives to Jesus like that?
और इस चीज़ को पूछना अच्छा बात है कि क्या सच में हम इच्छा रखते हैं अपने जीवन को यीशु को समर्पित करने के लिए.
When we are motivated by the love of Christ, it will not be a struggle for us.
और जब यीशु के प्रेम से प्रेरित होंगे, तब ये हमारे लिए संघर्ष नहीं होगा.
When we understand the depth of Christ's love, when he sacrifice himself for me, we will not be able to keep anything with us.
और जब हम यीशु के प्रेम की उस गहराई को समझ जाएंगे, तब कुछ भी हम अपने आप के लिए नहीं रख छोड़ेंगे.
We read another passage in 2 Corinthians chapter 5.
दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं
14 and 15.
14 और 15.
For the love of Christ constrains me, having concluded this that. So he's saying that love of Christ constrains me. Love Christ controls me.
और यहाँ वो कहता है मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है, मुझे नियंत्रित करता है.
Or in a way, the love of Christ compels me.
और एक तरीके से मसीह का प्रेम मुझे प्रेरित करता है.
So that is the power of the love of Christ.
और ये यीशु मसीह के प्रेम का सामर्थ है.
When his love accompanied by his sacrifice.
जब उसका प्रेम उस बलिदान के साथ लगा हुआ है.
Encouraging me to offer everything to him.
और इससे मुझे मैं प्रोत्साहित होता अपना सब कुछ समर्पण करने
and
के लिए.
A complete commitment and surrender and dedication and dedication.
एक संपूर्ण समर्पण.
And he is also saying that it is no longer sorry 2 Corinthians 5:14 and 15. He is saying that he died for all. Jesus died for all, and they who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf.
15 वचन. और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा.
So this is a good reason. Jesus died for me.
और ये बहुत अच्छा कारण है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा.
Therefore, I don't want to live for myself.
अब मैं अपने आप के लिए नहीं जीना चाहता.
Now onwards, I live for Jesus who died and rose again.
और मैं आगे को इस यीशु मसीह जो मेरे लिए मरा और पुनरुत्थान किया, उसके लिए मैं जीऊं.
So that is a true commitment.
और ये एक सच्चा समर्पण है.
When we surrender our lives completely to Him, it will reflect in our life.
और जब हम पूर्ण तरीके से सौंपेंगे अपना जीवन, वो हमारे जीवन से वो दिखेगा.
Anyone who is in Christ is a new creation.
और यीशु मसीह में जो है वो एक नई सृष्टि है.
We can see signs of transformation in our life.
और हमारे जीवन में बदलाव के चिन्हों को हम देखेंगे.
And is as good as we received a new nature.
और इस तरह से होगा कि जैसे कि हमने एक नया स्वभाव प्राप्त किया है.
It's like a good example is if you compare a lamb and a pig.
और जैसे हम एक तुलना करते हैं एक मेमने के साथ और एक सुअर के साथ.
An unregenerated person, something like a pig.
और जो एक नया जीवन जो पुनस्थापित नहीं हुआ है, जिसका जीवन उसका जीवन एक सुअर के समान होगा.
A pig's desire is always to the muck and dirt and filth.
और हमेशा सुअर की जो इच्छा होती है, वो हमेशा उस गंदगी के अंदर, उस कीचड़ के अंदर ही होती है.
For understanding, we say to do sin and nothing restricting. Our desire is is towards that.
और हम समझ सकते कि हमारी उस हमारी जो इच्छा है वो पाप करने के लिए उस तरफ ही हम आगे दौड़ते हैं.
Every opportunity one has will enjoy in that dirt and filth.
और हर एक उस कीचड़ के अंदर उस गंदगी के अंदर हर एक मौके के अंदर हम आनंदित आनंद लेंगे.
But when we are committed our life to Christ, when that transformation happened.
और जब हम अपना जीवन यीशु को समर्पित करते हैं एक बदलाव हमारे जीवन में आता है.
It's like we are like lamp.
और तब हमारे जीवन एक मेमने के समान हो जाता है.
Lamp doesn't love to dirty itself.
और मेमना जो है उसको गंदगी में पड़े रहना अच्छा नहीं लगता.
Lamb doesn't love to will not chase the filth.
और मेमना उस गंदगी के पीछे नहीं लगा रहेगा.
Its desire not toward that.
उसकी इच्छा उस तरफ नहीं है.
It might occasionally slip or fall down.
और कई बार वो उसमें गिर जाएगा.
But living in that filth is not its desire.
लेकिन उस गंदगी में रहना उसकी इच्छा नहीं है.
Living in sin is not its desire.
और पाप में रहना उसकी इच्छा नहीं है.
And whenever it slips or falls, it will do everything to come out of it, cleanse it.
और जब कभी फिसल कर उसमें गिर जाता है वो अपना सब कुछ करेगा उससे बाहर निकलने के लिए.
So when we are committing our life to Christ, that work of transformation will begin to happen in our life.
और जब अपना जीवन यीशु को समर्पण करते हैं तो एक बदलाव हमारे जीवन के अंदर शुरुआत हो जाता है.
May God help us to be challenged seeing the love which Jesus had all of us, and let that motivate us to for a complete surrender and dedication and commitment.
और ये हमें चुनौती दे कि हम उस यीशु की इस प्रेम को देख सके और वो हमें प्रेरणा दे कि अपना संपूर्ण जीवन हम उसे समर्पित कर सके.
He is worthy of our entire love and dedication and devotion.
और यीशु हमारे सारे समर्पण के योग्य है.
Because he already paid the price for us.
क्योंकि उसने एक दाम हमारे लिए पहले ही चुका दिया है.
He died on my behalf.
वो मेरे जगह पर वहां मृत्यु उसने लिया है.
So second aspect of that I thought we should share is when church is the body of Christ.
और दूसरा भाग जो है जो कलीसिया जो है मसीह का देह है.
Anyone who is a disciple of Christ will value the body of Christ.
और जो भी यीशु मसीह का शिष्य है वो यीशु के देह का मूल्य करेगा.
Whose head is Christ himself.
और जिसका सिर यीशु मसीह खुद है.
So I remember a time when I was like a wanderer.
और एक समय मेरे जीवन में था कि मैं एक भटकने वाला व्यक्ति के समान था.
I was a believer. I had accepted Jesus Christ as my savior. My wholeheartedly I committed my life to Christ.
और मैंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था. मैं विश्वासी था.
But I never had a spiritual home for some time.
और कुछ समय के लिए मेरे पास एक आत्मिक घर नहीं था.
I was a wanderer.
मैं भटकने वाला था.
I used to visit every Sunday one church, different church.
और हर रविवार को अलग अलग कलीसिया में मैं जाता था.
The reason is I knew it was very clear. My agenda was I did not want to commit myself to any church, anybody.
और मैं इसलिए करना चाहता मैं अपने आप को किसी भी कलीसिया और किसी को समर्पित नहीं करना चाहता.
I don't want to preserve myself.
मैं अपने आप को सुरक्षित रखना नहीं चाहता.
I want to go and get some fellowship, good word of God, everything. I want to get it after I get it, run away.
और मैं वहां जाके एक संगति एक वचन लेकर वहां से फिर भाग जाना चाहता था.
I did not want to give myself to them for the fellowship. I just want to receive something.
और मैं वहां से कुछ प्राप्त करना ही चाहता था. मैं कुछ देना नहीं चाहता था अपने आप का समर्पण.
I did not want to commit myself to the church. I just want to receive something.
और मैं सिर्फ पाप प्राप्त करना चाहता था. मैं समर्पित उस कलीसिया को नहीं होना चाहता था.
And next day I will go to another place.
और दूसरी बार मैं कहीं और जाऊंगा.
And following day I would go another place.
और उसके बाद और कहीं और जगह जाऊंगा.
So I remember God was merciful to speak to me.
और परमेश्वर ने अपनी दया से मुझसे बात किया.
Something like this. No, don't treat my church like a restaurant.
और जब परमेश्वर ने मुझसे बात किया उसने कहा कि मेरे कलीसिया को एक रेस्टोरेंट की तरह तू मत ले.
रेस्टोरेंट वी कैन गो एनी रेस्टोरेंट ईट राइट.
और हम रेस्टोरेंट में कहीं पर भी जाते खाना खाने के लिए.
वी आर नो कमिटमेंट देयर.
वहां हमारा कोई समर्पण नहीं.
आई डोंट सी द रेस्टोरेंट एज लाइक माय होम.
और रेस्टोरेंट को मैं अपने घर के जैसा नहीं देखता हूं.
एंड द व्हाट गॉड स्पोक टू यू यू कैन फाइंड इन अ सिटी वेयर यू आर फाइंड अ व्हिच आर बेस्ट church you feel a fellowship you will a body where people gather together and be part of it.
Aur parmeshwar ne mujhe bataya ki ek kalisya kya ek shahar ke andar achhi kalisya dhoonde jahan par aap uska bhag ban sakte hain.
Should find a spiritual home for your own benefit.
Aur hamare khud ke fayde ke liye ek aatmik ghar dhoondna chahiye.
You should learn to commit yourself there.
Aur hame wahan par samarpit hona seekhna chahiye.
When you commit yourself there, you have something to receive, you have something to give as well.
Aur jab hum samarpit karte kuch hum prapt karte kuch hum dete hain.
I learned that lesson.
और मैंने उस पार्ट को सीखा.
And that is after when I committed myself to a local church, and that is time when God filled me with the Holy Spirit.
और जब मैंने एक लोकल चर्च में कलीसिया में अपने आप को समर्पित किया तब प्रभु ने पवित्र आत्मा से मुझे भरा.
So committing ourselves to any local church is very important.
और लोकल चर्च कलीसिया के अंदर अपने आप को समर्पित करने बहुत ही महत्व का भाग है।
यू कैन टेक इनफ टाइम टू व्हिच चर्च गॉड हैज गिवन, व्हिच स्पिरिचुअल होम गॉड हैज गिवन यू।
और आप पर्याप्त समय ले सकते हैं, आप कौन से कलीसिया के अंदर कौन से आत्मिक घर में जाना चाहते हैं।
बट वंस यू फाइंड यू शुड बी कमिटेड,
और जब आप उसको ढूंढ लेते हैं तब आपको उसे समर्पित होना है।
एंड बिकॉज़ इट्स लाइक आवर होम, वी डोंट गो टू अ डिफरेंट होम एंड स्टे एवरी नाइट, राइट?
या हमारा एक ही घर होता है, हम हर रोज कहीं और जाकर नहीं रहते हैं, हर रात को।
इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज वी विल नॉट ग्रो।
ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम बढ़ेंगे नहीं।
समथिंग व्हिच आई नोटिस्ड वाज इन सेकंड कुरिन्थियस चैप्टर 8
और दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय के अंदर,
इट 1-5, यू कैन सी इन योर ओन बाइबल,
अपने बाइबल में देख सकते हैं
1-5, बट आई जस्ट वांट टू शो यू दैट लास्ट वर्स 5, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 8 1-5,
दूसरा कुरिन्थी 8 1-5,
वर्स 5,
पांच वचन।
एंड टू दिस ही सेइंग अबाउट द बिलीवर्स इन कुरिन्थियंस, नॉट एज वी हैड एक्सपेक्टेड, नो, ही इज टॉकिंग अबाउट द मैसिडोनियन चर्चेस, ही इज सेइंग दैट, ही इज टेलिंग दिस टू बिलीवर्स इन कुरिन्थ, he's speaking about Macedonian believers, and he's saying that not that we had expected, but they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God.
और वहां से मकदूनिया की कलीसिया से बात करते कहते हैं, जैसी हमने आशा की थी वैसी नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया।
So these Macedonian believers showed an act, they commit themselves to Christ first, then they committed also to the body of Christ.
और मकदूनिया की कलीसिया पहले परमेश्वर को अपने आप को सौंपती है और फिर वहां के कलीसिया को अपने आप को सौंप दिया।
So it is important each one of you, normally I encourage everyone, take your time, look for a local church expression of the body of Christ wherever convenient to you, but once you find that, be committed there, don't be a wanderer.
और मैं आपसे प्रोत्साहित करना चाहता हूं, भटकने वाले ना रहे, लेकिन एक कलीसिया को ढूंढे पर्याप्त समय लेकर और वहां समर्पित हो।
No church may be perfect,
कोई भी कलीसिया सिद्ध नहीं है,
but you should find what God has given you,
लेकिन आपको वो ढूंढना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है।
Once you have seen that, you should be devoted there, you should be committed there.
और जब आप उसको देख लेते तब आपको वहां पे अपने आप को समर्पित करना है।
There you can grow and flourish, you can give and you can take.
और जहां आप बढ़ सकते, दे सकते और प्राप्त कर सकते हैं।
I remember something which God spoke to me some years back, Hebrews chapter 10, 24 and 25.
इब्रानियों 10, 24 और 25 से प्रभु ने कुछ सालों पहले मुझसे बात किया।
Let us consider how to stimulate one another in love and good deeds.
और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरों की चिंता किया करें।
There's a tremendous need to encourage one another, promote one another, lift one another, push one another ahead.
और ये बहुत ही जरूरी बात है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को बढ़ावा दे, आगे बढ़ाएं।
You can see the stimulate one another.
और एक दूसरे को उस्काए हैं।
Propel one another.
और एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करें।
Primarily to love and followed by good deeds.
और
love
प्रेम
and good deeds.
और भले कामों से उस्काए हम।
You all need that encouragement.
हमें सबको इस प्रोत्साहन की जरूरत है।
Love and good deeds.
और प्रेम और भले कामों
में। And that we receive in the church.
और वो हम कलीसिया में प्राप्त करते हैं।
And something interesting written, not forsaking our assembling together.
और 25 वचन में कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े।
As the habit of some.
और कितनों की तो रीति है।
But encouraging one another and all the more as you see the drawing near.
एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करते रहे और ज्यो ज्यो हम उस दिन के निकट आते हैं।
Despise our gathering together.
और हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना उसको तुच्छ न जाने।
Value the gathering together.
लेकिन उसका मूल्य जाने एक साथ इकट्ठा होने का।
Value the spiritual nourishment I can receive from the gathering together and I can also give.
और उसका हम मूल्य करें कि जहां हम आत्मिक उस पाठ को सीखते हैं और हमें अच्छा फल मिलता है।
I see many believers, they don't value fellowship, they don't understand the value of fellowship.
कई विश्वासियों को मैं जानता हूं जो संगति की उस मूल्य को नहीं जानते हैं।
And it's very hard to explain what they miss.
और ये बहुत ही कठिन हो जाता है कि वो क्या खो बैठते हैं उसके कारण।
It only hinder their own progress and growth.
और वो उनके उनकी जो वृद्धि है, जो उनका बढ़ना होता है, उसी को वो रोकते हैं।
इट इज लाइक समटाइम यू नो अ चाइल्ड वाज नॉट वॉकिंग, आफ्टर 10 इयर्स इट स्टार्टेड वॉकिंग।
और मतलब एक बच्चा जो है वो नहीं चल पा रहा, लेकिन 10 साल के बाद वो चल रहा है।
बट इज वॉकिंग गुड, इज मेकिंग सम प्रोग्रेस, बट सो स्लो।
वो आगे चल रहा है लेकिन बहुत कम वो बढ़ रहा है।
इट शुड बी वॉकिंग at the end of around 1 year, but he started walking after 10 years.
Ek saal ke baad usse chalna chahiye, lekin ab wo dheere dheere 10 saal ke baad chal raha hai.
So it's an example what we could miss.
Lekin ye udaharan se hum kitna kho sakte hain.
So let's, dear brothers, let us value the fellowship.
Isliye hum sangati ka moolya kare.
And there are others who they will do anything to fellowship, and that is a good example.
और ऐसे लोग भी होते हैं जो सब कुछ करते हैं उस मूल उस संगति को प्राप्त करने के लिए. अच्छा उदाहरण वो है.
आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग अ रूल, बट इट्स अ हार्ट एटीट्यूड. इवन इफ बाय व्हाटएवर रीजन आई एम नॉट एबल टू गो फॉर फेलो, आवर हार्ट शुड बी देयर.
और मैं किसी एक नियम के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर हम नहीं जा पाते संगति में तो हमारा हृदय वहाँ लगा होना चाहिए.
दैट इज देयर गॉड कैन इवन ब्लेस अस इन आवर कंस्ट्रेंट.
और तभी उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें आशीष देगा.
Just a last Hebrew chapter 11, 24-26.
Ibraniyo 11 adhyay 24-26 vachan.
By faith Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward.
विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन के बेटे का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा. उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी.
So Moses chose. He chose rather to suffer ill treatment with the people of God.
और मूसा यहाँ पे चुनता है कि अपने लोगों के साथ दुख को उठाए.
So he was willing to pay that cost.
और वो मूसा यहाँ पर तैयार है उस कीमत को चुकाने के लिए.
Then to enjoy the passing pleasures of sin.
और न कि उस पाप के थोड़े समय के सुख में आनंद मनाए.
And so he considered the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt.
और वो कहता है मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा.
Sometime I used to ask myself, for the sake of fellowship, am I willing to pay a price?
और मैं कई बार अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ कि संगति प्राप्त करने के लिए क्या मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ?
Some sacrifice, some inconvenience, some cost.
कुछ बलिदान या कुछ तो कीमत उस.
That will indicate our commitment.
और वो एक चिन्ह के समान होगा, वो हमें हमारा समर्पण बताएगा.
Many things will be hidden, not visible to others.
और बहुत सारी चीजें छिपी हुई होगी, लोगों को नहीं दिखेगी.
And it's such to encourage one another.
और इस प्रकार हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं.
So may God help us to once again look at our own life and see how is our relationship with Christ.
और हम अपने आप को एक बार जांचे देखें कि हमारा जो रिश्ता है यीशु के साथ किस प्रकार है.
Do I see this way as the man saw the field where the pearls of great price was hidden.
और क्या हम उसको इस प्रकार देख सकते जैसे उस व्यक्ति ने उस धन को देखा जो उस खेत में छिपा हुआ था?
Am I willing to pay a price?
और क्या मैं तैयार हूँ उस कीमत को चुकाने के लिए?
Again, our choice.
और हमारा चुनाव.
It's good to remind ourselves, for disciples there is a cost.
और इस अपने आप को ये याद दिलाना अच्छी बात है कि शिष्य बनने के लिए कीमत है.
But for the love of Christ, as the love of constraints, we I don't want to preserve anything.
लेकिन यीशु मसीह का प्रेम जो हमें विवश करता है, उसके कारण हम कुछ भी अपने आप के लिए बचाए नहीं रखते हैं.
When we commit ourselves, that will indicate in our beginning of transformation in our life.
और जब हम अपना जीवन समर्पण करते हैं, तब वो दर्शाता है हमारा परिवर्तित जीवन शुरुआत हो जाता है.
People can see it's like a new creation.
और लोग देख सकते कि एक नई सृष्टि है.
A change has happened.
और एक बदलाव वहाँ हुआ है.
And when we love Christ, we will also love the church.
और जब हम यीशु से प्रेम करेंगे, हम उसकी कलीसिया से भी प्रेम करेंगे.
Just like in a way we are committed to Christ, there will be a level of commitment to the local church, which is an expression of body of Christ.
और जैसे हम अपना जीवन यीशु को समर्पित करते हैं, वैसे ही जो कलीसिया है, जो यीशु मसीह का देह उसको दर्शाता है, उसको भी हम अपना जीवन समर्पित करेंगे.
May God help us.
प्रभु हमारी सहायता करें.
I want to encourage many brothers and sisters to
praise and thank the Lord.
प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करता हूँ.
Really, it was a wonderful verse of encouragement, I would say.
बहुत ही अद्भुत प्रोत्साहन के वचन मैं कहूँगा इन्हें.
Where the Spirit is telling us.
जहाँ पवित्र आत्मा हमसे कहता है.
But have you really crucified yourself?
کہ آپ نے سچ میں اپنے آپ کو کروسیت کیا ہے.
Paul in 2:20 as we read, he says, he writes it very clearly telling that I have been crucified.
Paulus bade saaf shabdon mein kehta hai ki main yeshu masih ke sath crucified kiya gaya hu.
And the life what I live is not mine, it is the life of Christ.
Ab jo main jeevan jeeta hu wo ab main nahi lekin yeshu mujh mein jeeta hai.
And it is a question, a verse of challenge which I take it to myself.
Aur ek aisa prashn hai jo mujhe chunauti deta hai aur main apne aap ke liye leta hu.
Do I really live a life of crucifixion?
Kya sach mein main wo jeevan jeeta hu jo crucified kiya gaya hai?
Or am I continuing with the same, just telling by words that, you know, I have crucified and I, the life what I live for Christ? Is it just words or is it really, it is a meaning to my meaning in my life?
Kya wo crucified jeevan keval shabdon mein hi hai lekin ya fir arthpurna hai mere jeevan ke liye?
Last week also I was reminded about two things in our Wednesday meeting.
Aur pichle budhwar ki sabha mein do cheeze mujhe yaad dilayi parmeshwar ne.
And there also it was talking about, you know, living in the spirit of God and living as a natural man.
Aur wahan pe do cheeze thi, parmeshwar ki aatma mein rehna aur ek sadharan manushya ke taur pe rehna.
It's in 1 Corinthians chapter 2.
Pehla Corinthi dusre adhyay mein paya jata hai.
Verse 14 to 16 which touched me.
और 14 से 16 वचन में लिखा
है. This morning I was reminded with that particular verse.
इस वचन से मुझे आज सुबह याद दिलाया गया.
In there, you know, in verse 14 it starts with talking about natural person.
और यहां पे एक शारीरिक मनुष्य के बारे में लिखा गया है.
And a natural person, he says that he does not understand the things of the spirit of God.
और वहां लिखा है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता.
And verse 15 starts with spiritual person.
और फिर 15 वचन आत्मिक मनुष्य से स्टार्ट आरंभ होता है.
And it says spiritual person judges all things by himself.
और वहां लिखा है आत्मिक जन सब कुछ जांचता है.
It's again like, you know, what I am today for Christ.
और यही है कि मैं आज क्या हूं पर यीशु मसीह के प्रति.
Am I really living in clarity with God or am I just hiding some things or hiding myself, living a natural person's life?
और क्या मैं साफ तरीके से उसके सामने जी रहा हूँ या शारीरिक मनुष्य के समान कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ?
In other words, like professing to be wise.
और हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे कि बुद्धिमान है.
And you know, telling that I am good and I am all and no one can point out my mistake.
और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझमें कोई भी कमी घटी नहीं है.
It's like where I really mean the life what I am living for Christ.
Aur ye is prakar hai ki sach mein jab wo jeevan yeshu masi mujhme us prakar mein sach mein jeeta hu.
And over here, you know, in verse 16 it says that we should have the mind of Christ.
Aur 16 vachan mein yahan likhta hai ki hamare andar prabhu ka man hona zaruri hai.
Having the mind of Christ is not again by words, it is having the same alike mind of Christ and I live with that mind of Christ.
और केवल शब्दों में प्रभु का मन होना नहीं लेकिन सच में यीशु का मन होना और उस प्रकार में जीऊं.
एंड इन कमिटेड टू दैट लव, लाइक व्हाट वी जस्ट नाउ हर्ड अबाउट, यू नो, रियली कमिटिंग टू दैट लव एंड यू नो इन दैट फेलोशिप, ग्रोइंग इन दैट एंड हैविंग द मीनिंग ऑफ माय लाइफ टू दैट.
और सच में उस प्रेम के प्रति, जैसे हमने सुना कि उस प्रेम के प्रति समर्पण, उस संगति के प्रति हमें समर्पण दिखाना है और उसको अर्थ भरे उसमें जीना है.
आई रियली टेक this words has challenged to my life that to live and to mean when I say I live a life of Christ, I need to mean that in my life.
Aur sach mein ye chunauti main apne aap ko dena chahta hu ki jab main kehta hu sach mein us arth bhare main jee saku ki main yeshu ke liye jee paun.
It's for every one of us that we really take it as a challenge to our life.
Aur hum sabhi isko apne jeevan mein ek chunauti ke roop mein le sakte hain.
Praise Lord.
Prab ki stuti ho.
I was thinking that Paul said that the love of Christ constrains me.
Main soch raha tha is baat ko, jaise Paulus kehta hai Yeshu Masih ka prem mujhe vivash karta hai.
It is not something he said just in words.
Aur keval usne shabdon mein ye nahi kaha.
So I was thinking my past in my last one week, if I say that the love of Christ is constraining me, it should be that did I live for myself or did I live for Jesus?
aur agar main kehta hu ki pichle saptah mein mujhe yeshu ne ke prem ne mujhe vivash kiya, matlab kya maine apne aap ke liye jiya ya yeshu masi ke liye jeevan jiya?
So in other words, when I'm in a situation, when I'm in something which I want to do, did I check whether I did what I wanted to do or did I do what Jesus wanted me to do?
और अपने आप को मैं अगर जांचूं और कुछ परिस्थिति में कुछ करने के लिए मैंने वो किया जो मैं करना चाह रहा था या यीशु मसीह चाहता था वो मैंने किया।
So that is the meaning of I want to live for Jesus.
और उसी का यही मतलब होता है कि मैं यीशु मसीह के लिए जीना चाहता
हूं। I don't want to do my own will.
और मैं अपने आप की इच्छा नहीं करना चाहता।
I am ready to that moment when I want to do my will. I am ready to say, Lord, I don't want to do my will. I want to do your will.
और जब मैं अपनी इच्छा करने के लिए जाता हूं, तब मैं ये तैयार रहूं कि प्रभु मैं अपनी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा करना चाहता हूं।
Because it is easy to sing songs and say many things, but when it comes to that situation, when I want to do my will, that is the time when I know that I love Jesus or not.
और बहुत आसान है गीत को गाना कहना, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर यीशु मसीह की इच्छा करना वो बहुत जरूरी है।
लास्ट वीक वन वर्स व्हिच रियली एनकरेज मी वाज इन फ्रॉम जॉन 18।
यूहन्ना 18 से एक वचन मुझे बहुत प्रोत्साहित पिछले सप्ताह किया।
जॉन 18 एंड वर्स 4
18 उसका 4 वचन।
जीसस देयरफॉर नोइंग ऑल थिंग्स दैट शुड कम अपॉन हिम went forth and said to them, whom do you seek?
तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला, उनसे कहा, किसे ढूंढते हो?
So here we see Jesus knows that everything that is going to come upon him.
और तब यीशु वहां जानता था कि जो सारी बातें उन पर आने वाली है।
So he knew that they are going to catch him.
और वहां उसको यीशु को पता था कि वो उसको पकड़ने आने वाले हैं।
And they are going to really he has to suffer a lot for the sake of them.
और वहां उसको यीशु को पता था कि उसे बहुत ज्यादा दुख उनके प्रति उठाना पड़ेगा।
सो एवरीथिंग ही न्यू एंड ही वेंट एंड आस्क्ड देम हुम डू यू सीक।
और सब कुछ वो जानता था, लेकिन फिर भी वो कहता है, किसे ढूंढते हो?
सो दैट इज व्हाट इज द लव ऑफ जीसस।
और यही यीशु का प्रेम है।
इट इज नॉट समबडी केम एंड कॉट हिम एंड फोर्सफुली ही हैड टू गो टू द क्रॉस।
और वहां कोई आया उसको जबरदस्ती उसको पकड़कर वहां क्रूस के परस लेकर जाते, इस तरह से नहीं था।
सो जीसस गेव हिमसेल्फ फॉर मी।
और यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे लिए दे दिया।
इफ आई हैव सीन दैट क्लियरली दैट जीसस वाज रेडी टू गिव हिमसेल्फ फॉर मी।
और जब इसको साफ तरीके से मैं देखूं कि यीशु तैयार था अपने आप को मेरे लिए दे देने के लिए।
इफ आई हैव सीन दैट क्लियरली,
अगर मैंने इसको साफ तरीके से अगर देख लिया है,
इट इज ईजी फॉर मी टू गिव माईसेल्फ टू जीसस।
तब मेरे लिए आसान होगा यीशु मसीह को अपने आप को देने के लिए।
बिकॉज बाइबल सेज दैट वी लव हिम बिकॉज ही फर्स्ट लव्ड अस।
बाइबल कहता है कि हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया।
इट इज नॉट पॉसिबल टू लव जीसस विदाउट नोइंग हाउ मच ही लव्ड मी।
और ये संभव नहीं जब तक हम उसके प्रेम को न जाने तब तक हम उससे प्रेम कर पाए।
प्रेज गॉड फॉर द वर्ड्स गॉड स्पोक टू अस।
प्रभु की स्तुति हो जो वचन से आज हमसे बात की।
आई वॉज थिंकिंग ऑफ दिस वर्स इन जॉन 3।
और मैं इस वचन के बारे में सोच रहा था जो यूहन्ना 3 अध्याय में है।
3:19
19 वचन।
एक्चुअली या दिस इज द जजमेंट दैट लाइट हैज कम इनटू द वर्ल्ड एंड मेन लव द डार्कनेस रादर देन द लाइट फॉर देयर डीड्स वर ईविल।
और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे।
एंड हियर द लाइट मीन्स जीसस।
और यहाँ ज्योति का मतलब यीशु मसीह है।
सो जीसस केम इनटू द वर्ल्ड एंड एम आई लविंग माई सिन और एम आई हेटिंग माई सिन।
और यीशु मसीह जगत में आया, मैं पाप से प्रेम कर रहा हूँ या उससे घृणा करता हूँ।
इट सेज इन 20 दैट एवरीवन हु डस इवल हेट्स द लाइट।
और 20 वचन में कहता है कि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है।
सो आई नो दैट आई एम रियली चेंज्ड व्हेन आई ऑलवेज वांट टू बी इन द लाइट।
और मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि जब मैं इसको जानता हूँ कि मैं बदल गया हूँ तो मैं हमेशा उस ज्योति में बने रहना चाहता हूँ।
आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ। इफ आई सी समथिंग रॉन्ग आई डोंट वांट टू हाइड
इट। और कुछ भी गलत जब अपने जीवन में देखता हूँ मैं उसे छिपाना नहीं चाहता हूँ।
दैट विल शो दैट आई रियली वांट टू बी इन द लाइट।
और ये दर्शाता है कि मैं सच में उस ज्योति में हूँ।
It says in 21 that you practices the truth comes to the light.
और जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है।
So I know that I am in the light when I practice the truth.
और मैं कैसे जान जाऊँ कि मैं ज्योति के निकट हूँ जब मैं सत्य पर चलता हूँ।
And I know that I am in the light when I look at Jesus and really want my life to be as Jesus was.
और मैं कैसे जानूं कि मैं ज्योति में हूं जब मैं यीशु को देखता हूं और उसका जीवन जैसा है वैसा ही मेरे जीवन में चाहता हूं.
आई बिलीव दैट दिस द लव ऑफ गॉड दैट इज हार्ट थिंग एक्चुअली एंड इट कम्स आउट इन इट्स फ्रूट्स.
और ये मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर से प्रेम करना वो हृदय की बात है और वो हमारे फलों से दिखता है.
एंड आई बिलीव दैट इफ आई रियली गिव माई सेल्फ इट विल बी फर्स्ट सीन इन माई होम.
और जब मैं ये विश्वास करता हूं कि जब मैं पूरी तरह से अपने आप को दे दूंगा परमेश्वर को सबसे पहले मेरे घर में दिखेगा.
Because I can fool the people in the church, but God knows my real. Because most of the time I'm at home.
और मैं कलीसिया के अंदर ज़्यादातर लोगों को मूर्ख बना सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर समय मैं घर में होता हूँ.
Am I ready to give myself to my wife?
और क्या मैं अपने आप को मेरी पत्नी को देने के लिए मैं तैयार हूँ?
Have I seen how much Jesus has given himself?
और क्या मैं इस चीज को देख पाता हूँ यीशु मसीह ने कितना अधिक अपने आप को मेरे लिए दिया?
Have I really seen his love for me?
क्या मैंने देखा उसके प्रेम को जो उसने मेरे से किया?
Then it will be easy to give myself for my wife at home.
और तब मेरे लिए आसान होगा अपने आप को मेरी पत्नी के लिए सौंपने के लिए.
If it doesn't begin at home, it cannot begin in the church.
अगर वो घर पर शुरुआत नहीं होती तो कलीसिया में भी आरंभ नहीं हो सकता.
I'll be a big hypocrite.
और हम एक पाखंड से भरे हुए होंगे.
So I really want to, when God shows me my darkness, I want to agree and want to acknowledge it and to confess it.
और जब मैं इस परमेश्वर मुझे कोई अंधकार दिखाता है, मैं उसको मान लेना चाहता हूँ.
In 1 John it says that if we walk in the light, then we have fellowship with the father.
और पहले यूहन्ना में जैसे लिखा है कि अगर हम उस ज्योति में चलते हैं तब हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं.
And when we always want to walk in the light, then we have fellowship and then we confess anything that is in the darkness, whatever darkness we have.
और जब हम ज्योति में चलते हैं, कोई भी अंधकार होगा उसके हम मान लेंगे.
Sometimes God shows something that no one will know.
और परमेश्वर कई बार कुछ ऐसी चीजों को देखेगा जो और कोई नहीं जानता.
द सीक्रेट जेलसी, द सीक्रेट एनवी दैट इज देयर.
और एक छिपी हुई जो ईर्ष्या जो हमारे अंदर होगी किसी के प्रति.
दैट नो वन विल बी एबल टू सी दैट एवरीवन विल थिंक आई एम वेरी होली एंड ऑल.
और सब लोग ये देखेंगे कि मैं बहुत पवित्र हूँ, उस अंदरूनी चीज को.
बट आई एम रेडी टू लॉर्ड, आई वांट टू ओपन अप माय सेल्फ कंप्लीटली टू व्हाटएवर यू शो, आई वांट टू कन्फेस इट इमीडिएटली.
और क्या मैं तैयार हूँ अपने आप को पूरी तरह से खोल कर कहने के लिए, प्रभु जो कुछ तू दिखाएगा मैं उसे मान लूंगा.
आई नॉट थिंक दैट नो वन इज सीइंग मी सो इट्स ओके.
और मैं इस तरह से नहीं कि कोई देख नहीं रहा तब तक ठीक है.
समटाइम्स सम इविल थॉट्स कम और व्हाटएवर कम्स, एम आई रेडी टू इमीडिएटली कन्फेस इट रादर देन थिंकिंग दैट नो वन इज सीइंग इट्स ओके.
और जब एक बुरे विचार मेरे अंदर आता है, क्या मैं तुरंत उस चीज को प्रभु मैं कबूल करता हूँ, ऐसा नहीं सोचता कि कोई मुझे देख नहीं रहा है.
दैट विल शो माई कमिटमेंट टू द लॉर्ड.
और वो दर्शाएगा मेरा समर्पण परमेश्वर के प्रति.
इट्स नॉट जस्ट इन वर्ड्स एज़ वी हर्ड, इट्स रियली it's practicing it what we have heard.
और ये जैसे हमने सुना कि केवल शब्दों में नहीं होगा लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम समर्पित करेंगे.
only God can do it and his mighty power of the Holy Spirit is available to us to live this life.
और केवल परमेश्वर कर सकता है, उसका सामर्थ्य पवित्र आत्मा ये जीवन जीने के लिए हमारे पास है.
He never condemns us and he never discourages us.
वो हमें कभी निराश नहीं करता या दोषित नहीं करता.
We can come to him in the worst condition.
और हमारी सबसे बदतर हालत में उसके पास आ सकते हैं.
But one thing he wants is I have to open up myself completely to him, completely, nothing hiding in it, nothing.
और एक चीज मुझे करना है, संपूर्ण तरीके से पूरी तरह से मुझे अपने आप को खोलकर उसके पास रखना है, कुछ भी छिपाना नहीं है.
And when I am shown anything wrong by someone, when correction is given, I want to accept it immediately.
और कोई अगर सुधार मेरी गलतियां दिखाता है, मुझे तुरंत उसको मान लेना है.
That is the only way to grow.
और इसी प्रकार मैं बढ़ूंगा.